पांचवे अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है, कर्म संन्यास योग। पिछली बार हम श्लोक क्रमांक 22 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस श्लोक में यह बताया जाता है कि इस संसार का भोग करना ही दुख का कारण हो जाता है। जितना ज्यादा हम भोग करेंगे उतना ज्यादा हम दुखी होंगे। तो जो व्यक्ति दुख से बचना चाहेगा उसे भोग से अपने आप को रोकना चाहिए। जिस चीज में हम ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वही चीज हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाएगा। पिछली बार चित्रकेतु महाराज की कथा बोल रहे थे कि राजा चित्रकेतु को इतनी रानियां होने के बाद भी कोई पुत्र नहीं था और इसलिए उनको बहुत दुख हुआ था। अंगिरा मुनि की कृपा से उनको आखिर पुत्र हुआ, लेकिन अंगिरा मुनि ने कहा था कि ये लड़का पहले आपको दुख देगा बाद में सुख, पहले सुख देगा बाद में दुख, इसलिए उसका नाम होगा हर्ष शोक। तो राजा ने स्वीकार की थी वो बात, और जन्म के थोड़े ही समय बाद वो बच्चा मर गया। तो चित्रकेतु राजा बड़े दुखी थे क्योंकि उनको पुत्र नहीं था। अब जितने ज्यादा वो दुखी थे जब उनको पुत्र मिला उसे कई गुना ज्यादा वो सुखी हो गए पुत्र प्राप्त करने के बाद। और जब पुत्र प्राप्त हुआ और इतने खुश हो गए थे, और जब उस बच्चे की मृत्यु हुई तो इतने दुखी हुए कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब है कि जिन चीजों के ऊपर हम सुख की आशा रखते हैं वही चीजें भले हमको इस समय सुख प्रदान करें, लेकिन वही चीजें आगे चल के हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाले हैं। अगर कोई अपने पैसे से ज्यादा आसक्त है और उसको पैसे से बहुत ज्यादा सुख मिलता है तो वही पैसा उसको आगे चल के सबसे बड़ा दुख देगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने सौंदर्य का सबसे ज्यादा गर्व है, सौंदर्य के प्रति आसक्ति है, तो वही शारीरिक सौंदर्य सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगा एक दिन। क्यों? क्योंकि चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पुत्र हो, सौंदर्य हो, जो भी कुछ हो, वो हमारे साथ केवल थोड़े दिनों के लिए रहेगा, बाद में हमसे छीन लिया जाएगा। या तो ये वस्तु हमसे छीन लिया जाएगा या हम इस वस्तु से छीन लिए जाएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि हम और हमारा सौंदर्य, हम हमारा शिक्षण, हम और हमारा धन इत्यादि, हम अलग होने वाले हैं एक ना एक दिन। तो इन चीजों में अगर हमने अभी सुख की अपेक्षा की, जब इन चीजों से हम अलग हो जाएंगे तो उस समय हमें उतना ही दुख इन्हीं चीजों से मिलने वाला है। हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में भी जब बच्चा छोटा होता है तो परिवार के सभी सदस्य बहुत लाड़ प्यार करते हैं बच्चे को, और सारे परिवार का केंद्र बिंदु होता है बच्चा। परिवार में सुखी सुख की सीमा नहीं रहती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझ लीजिए कि एक बच्चा शैतान हो गया, बहुत बदमाश हो गया, तो वही बच्चा जो कि सारे परिवार को इतना सुख देता था आज उसी परिवार को सबसे बड़ा दुख देगा। ऐसे घटना हम पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति थे, अखबार में खबर आई थी कि एक पुलिस ऑफिसर थे, उत्तर प्रदेश में, और रिटायर हो गए थे, और उनका लड़का बदमाश बन गया था। आखिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि पिताजी ने अपने ही बच्चे को अपने बंदूक से गोली मारकर ख़त्म कर दिया घर के अंदर। अखबार में कई साल पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। कहने का मतलब है कि वही बच्चा जो पहले हमको इतना सुख देता है जब छोटा होता है, आगे चल के उसकी वजह से इतना दुख। तो यही संसार है, सुख और दुख इधर और जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां इस संसार में सुख प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करो, क्योंकि जिन चीजों से तुम्हें सुख मिल रहा है या जिन चीजों से सुख की अपेक्षा कर रहे हो, वही चीज तुम्हें दुख देने वाली है आगे चल के। इसलिए कृष्ण भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि केवल अपने प्रारब्ध के अनुसार जो सुख आएगा, जो दुख आएगा, उसका अनुभव हमें करना है, सहन करना है और हमारा जीवन बिताना है। आगे चल के भगवान ये बताने वाले हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में रख सकता है वो सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि ये संसार का सुख जो है ये इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों की मांगे हैं। हमारी इंद्रियां नाना प्रकार की चीजें मांगते रहते हैं तृप्ति के लिए। आंख कुछ चीज मांगते हैं, कान कुछ चीज मांगते हैं, हमारा जिह्वा जो है वो कुछ और चीज मांगते हैं। ऐसे हमारे पांचों इंद्रियां अलग अलग तरह की चीज मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करते करते हमारा सारा जीवन बीत जाता है, परंतु कभी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं। उनको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जितना आप उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा उनको और चाहिए। जैसा कि अग्नि के अंदर आपने अगर घी डाल दिया तो क्या अग्नि बुझ जाएगी? अग्नि तो और प्रज्वलित रूप से जलना जलेगी। ठीक उसी तरह से हमारी इंद्रियां तो बहुत कुछ मांगती है हमसे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो जितना हम इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा ही इंद्रियां हमको तंग करेंगे, हैरान करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति इन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है और इंद्रियों के मांगों को वो नकार सकता है, वही व्यक्ति ये संसार में सुखी रह सकता है। न कि वो व्यक्ति जो हर इंद्रियों के मांग के लिए वो संतुष्ट करने के लिए प्रयास करेगा। समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि वो हर चीज मांगते हैं। बच्चा कहां भी जाता है बोलता मुझे ये चाहिए। अगर मार्केट में जाए बच्चे को तो सारा मार्केट ही चाहिए, बराबर है ना? हर दुकान में जो भी उसे पसंद आता है, मुझे ये चाहिए, वो दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये खाना है, वो पीना है, सारा बाजार खरीदने अगर चांस दे तो वो खरीद लेगा। तो माता पिता हर बात मानते हैं बच्चे की? अगर बच्चा कहता मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज देते हैं क्या माता पिता? नहीं देते हैं। अगर माता पिता ने बच्चे की सारी मांगे पूरी कर दी, मुझे चॉकलेट चाहिए ले लो, आइसक्रीम चाहिए ले लो, ये नहीं देखते हैं कि खाना का समय कब है, क्या है, कुछ नहीं देखते, बस जो मांगता है वो देते हैं, तो क्या होगा आगे चल के? बच्चा बिगड़ जाएगा। और जब बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा शैतान हो जाएगा। शैतान हो जाएगा तो उत्पात हो जाएगा, कोई शांति नहीं रहेगी। तो हमारा मन जो है वो भी एक छोटे बच्चे के बराबर है। मन कुछ ना कुछ मांगता रहता है, ये चाहिए वो दिला दो, ये अच्छा है मुझे वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मन की मांगे हैं अगर हमने इसी तरह से पूरी की जैसे माता पिता ने बच्चे की मांगे पूरी कर दी, तो क्या हो जाएगा? ये मन बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा तो क्या होगा आगे चल के? शैतान बन जाएगा। शैतान बनेगा तो क्या करेगा? उत्पात करेगा। उत्पात होने से हमारी शांति भंग हो जाएगी। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात् वैमात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवद्गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र हो जाता है, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में नहीं किया उस व्यक्ति के लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। है एक ही मन, लेकिन जब वश में करते हैं हम उसको, हमारा मित्र बनता है, वश में नहीं करते हैं हमारा शत्रु बन जाता है, सबसे बड़ा शत्रु। तो इसलिए हमारे मन और इंद्रियों की मांगे हैं। मन इंद्रियों का केंद्र है, क्योंकि इंद्रियां कुछ चीज पसंद करती हैं या किसी चीज को त्याग करती हैं मन के हिसाब से। हम कोई चीज देखते हैं, आंखों से वो चीज जाते हैं, पर निर्णय मन में होता है, ये अच्छा है कि बुरा है, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। हम कोई चीज खाते हैं, सामने अगर कोई रसगुल्ला हो, हमारी आंखें देखते हैं, मन सोचता है मुझे चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। और सामने करेला हो तो मन, आंखें देखती है करेले को भी, मन कहता है नहीं नहीं बाबा बहुत कड़वा है, पिछली बार हमने खाया था, अनुभव है हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं चाहिए करेला। जो भी हमारे पूर्व अनुभव हैं उस हिसाब से हमारा मन किसी चीज को स्वीकार करता है या पसंद करता है, या तो फिर उसको त्याग करता है या नकार देता है। तो हमारा अनुभव है कि रसगुल्ला बहुत अच्छी चीज है, मीठी चीज है, स्वादिष्ट है, तो इसलिए हमारी आंखें रसगुल्ले को देखती हैं और हमारा मन कहता है हाँ बहुत अच्छा मुझे चाहिए। फिर हमारे सारे बुद्धि काम करती है, बाकी हमारे कर्मेंद्रिय काम करते हैं उस रसगुल्ला प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से करेले का प्लेट अगर हमारे सामने रखा जाए भोजन के समय, तो हमारा मन कहता है नहीं नहीं ठीक नहीं है, तो हमारी बुद्धि चलती है, हाथ चलते हैं और प्लेट उधर रख देते हैं। तो सारी इंद्रियों का केंद्र मन है, मन को केंद्रित किया तो इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। मन को छठा इंद्रिय कहते हैं। कृष्ण भगवान भगवत गीता में समझाते हैं, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि जो जीव है आत्मा, वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है सनातन रूप से, लेकिन इस भौतिक संसार में आके वो इस सत्य को भूल गया है और केवल इस प्रकृति के कड़क नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, भोग करने का प्रयास कर रहा है। मन षष्ठान इंद्रियाणि, षष्ठ मतलब छह, इंद्रियाणि मतलब हमारी इंद्रियां, छह इंद्रियां जिनमें कि मन भी है, तो ये छह इंद्रियां संघर्ष कर रही हैं प्रकृति के साथ। तो यहां इस 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कैसे हमारी इंद्रियों के वश में करना और इंद्रियों के जो वेग होते हैं उनको सहन करना, ये बहुत जरूरी है अगर किसी को सुख प्राप्त करना हो तो। अगर किसी को सुख नहीं चाहिए तो जितना चाहे उतना वो भोग करे, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करे, लेकिन अगर किसी को सुख चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, तो उसको इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए। तो आइए अभी 23वां श्लोक पढ़ते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। अनुवाद। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने से समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। कृपया अनुवाद को दोहराइए। कृष्ण भगवान यहां कह रहे हैं कि हमारे इंद्रियों के वेगों को सहन करना है और इच्छा और क्रोध, काम और क्रोध के वेगों को भी सहन करना है। कब? मृत्यु के पहले ही। ऐसे में नहीं सोचना हम जब एकदम बूढ़े हो जाएंगे तब तब हम ये सब काम करेंगे, भोग करेंगे करेंगे करेंगे, और जब एकदम बूढ़े हो जाएंगे, मृत्यु के शैया पर होंगे, तब हम शुरू करेंगे। तब नहीं होगा, बहुत देर हो जाएगी। भगवान कहते हैं यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, मतलब जब से हमें यह ज्ञान मिलता है तब से शुरू करना चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे तभी करेंगे। तो यहां कई तरह के वेगों का वर्णन आता है। वेग मतलब जो हमारे अंदर से हमको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोई शक्ति, कोई प्रभाव, धक्का। जैसे आप सबने अनुभव किया होगा, जब गुस्सा आता है तो आपको अनुभव होता है ना कि अंदर से बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ गया है ना, होता है ना। गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है, मानो कि एक लहर आ रही है, जैसे समुद्र के किनारे पे अगर आप खड़े हो और देखते कि लहर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, फिर आपको टकरा देता है। उसी तरह से अंदर लहरें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, मन के वेग, बहुत सारे वेग हैं अंदर से आके हमको हिला डालते हैं, पूरा उड़ा डालते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं ये वेग। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अगर इनमें से एक भी इंद्रिया किसी इंद्रिय के विषय के ऊपर केंद्रित है तो फिर ये सारे मन और बुद्धि को हरण कर सकता है। कैसे व्यक्ति का विपश्चित है, जो बहुत धीर व्यक्ति है, बहुत सोच विचार करने वाला ऐसे व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि बहुत कोशिश कर रहा है इंद्रियों को वश में करने के लिए, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और मन को भी हरण कर लेते हैं इंद्रियां, इतनी शक्तिशाली हैं। तो ये वेग है, इन वेगों को हमें सहन करना चाहिए। हमारे संप्रदाय में एक बहुत महान आचार्य रहे जिनका नाम है रूप गोस्वामी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री उपदेश अमृत, उपदेश का अमृत। और इस उपदेश अमृत में सबसे पहले ही श्लोक में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि छह तरह के वेग होते हैं जिनको हमें सहन करने के लिए सीखना चाहिए। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम। वो कहते हैं ये छह वेग कौन से हैं? वाचो वेगम, जो बोलने की प्रवृत्ति है हमारी, वो बहुत खतरनाक होती है। बड़बड़ 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 दिन रात हम बोलना चाहते हैं, हमारी जिह्वा हिलते रहते, कुछ ना कुछ हमें बोलने की इच्छा होती है। आदमी भले दो दिन के लिए कुछ बोले नहीं, कुछ खाए नहीं, लेकिन उसे बोले दो दिन चुप बैठो, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। बोलने के लिए जो वेग है, जिह्वा का वेग बहुत तेज है। आखिर में ये मन का वेग है, लेकिन जिह्वा के माध्यम से आता है। मन चंचल है तो मन की चंचलता की वजह से जिह्वा हिलते रहता है, बकबक 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 करते रहता है। अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे तो कुछ बकबक ही करते बैठेंगे। वाचो वेगम, मनसः, मन का वेग। मन अब कुछ कहता है, अगले क्षण कुछ उल्टा ही कहेगा, फिर तीसरे क्षण जो पहले सोच रहे थे वही कहेगा, चौथा क्षण कुछ और चौथी बात सोचेगा। मन भी बंदर की तरह या छोटे बच्चे की तरह है, इधर उधर भटकता रहता है। मन के वेग भी बहुत जबरदस्त होते हैं। तीसरा है क्रोध वेगम, गुस्सा। गुस्से का वेग जो है, जब आता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, और क्रोध में आकर आदमी कुछ भी कर सकता है। जो अपने बुद्धि होश ठिकाने होते समय वो नहीं करेगा, ऐसे कार्य आदमी गुस्से के समय कर देगा। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम मतलब हमारी जो जबान है, जिह्वा है, वो स्वादिष्ट चीजों को खाने के लिए बहुत इच्छुक है। हर समय हम देखते हैं कि खाने के लिए कौन से अच्छी वस्तु मिलेगी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु। ये वेग भी बहुत जबरदस्त है। जिह्वा वेगम, उदर वेगम। उदर मतलब हम ज्यादा से ज्यादा खाना चाहते हैं, पेट भर के बाद भी ज्यादा खाना चाहते हैं, रोकते नहीं है। उपस्थ वेगम मतलब जनेन्द्रियों का वेग, काम वासनाएं। तो ये छह तरह के वेग होते हैं, और जो व्यक्ति इन चीजों को, इन छह वेगों को सहन कर सकता है उसे धीर कहते हैं। एतान वेगान यो विषहेत धीरः। तो सच्चा धीर व्यक्ति कौन है? जो इन छह वेगों को सहन कर सकता है। सहन करना इसका मतलब है कि ये वेग हैं, ऐसा नहीं कि चले जाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है वो इन वेगों से विचलित नहीं होता है। जो अभक्त होते हैं या जो नौसुखीय भक्त होते हैं इन वेगों में आने से डावाडोल हो जाते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होते हैं वेग आए या नहीं आए वो इनको सहन करते हैं और विचलित नहीं होते हैं इनसे। ये दोनों के बीच में अंतर होता है। तो मन के वेग को, यह सबसे पहले वाचो वेगम, तो हमारी जो बोलने की प्रवृत्ति है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मौन व्रत रखने से नहीं, केवल भगवान के बारे में बोलने से। अगर हमारे बोलने की प्रवृत्ति हमने अगर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर दिया, केवल हमने बोला और इधर उधर की बातें नहीं की, तो हमारे जिह्वा, हमारी जो वाचा है वो नियंत्रित हो सकती है। मनसः वेगम, मन का वेग। मन अलग अलग तरह के चीजों के बारे में सोचता रहता है, तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? भगवान कृष्ण के बारे में सोचकर। सभी मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अंबरीश महाराज सतत अपना मन श्री कृष्ण की ओर केंद्रित करते थे, इसलिए सदैव शांत और सुखी रहते थे। तो ये मन को वश में करने का तरीका है। तीसरा है क्रोध वेगम। क्रोध को वश में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्रोध का इस्तेमाल अगर भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो फिर तो बुरा नहीं है। क्रोध भौतिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी हो सकता है। जब हमारे अहंकार के लिए, हमारे इंद्रियों के तृप्त अतृप्त होने की वजह से अगर हम क्रोधित हो गए तो ये क्रोध बुरा होता है, लेकिन अगर हमने भगवान की सेवा में क्रोध का उपयोग किया तो उससे उल्टा हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे कि हनुमान जी ने बड़े क्रोध से सारे लंका को जला डाला। जब हनुमान ने देखा कि सीता देवी को इस तरह से अशोक वाटिका में बंद अवस्था में रखा है रावण ने, तो इतना गुस्सा आया हनुमान को कि हनुमान ने जानबूझकर रावण के दरबार में प्रवेश करके अपने आप को पकड़वा लिया। और फिर जब इंद्रजीत ने हनुमान जी की पूंछ को जला दी तो हनुमान जी वहां से निकल पड़े। हनुमान जी के पास सारी योग सिद्धियां हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बड़ा शरीर धारण किया था, और इसलिए उनके पूंछ के ऊपर कपड़ा बांधकर वो कपड़े को आग लगा दी गई थी। और हनुमान जी अचानक छोटे हो गए, और छोटे हो गए तो वो कपड़ा बड़ा हो गया, और वह पूंछ लेकर उन्होंने सारे लंका को जला डाला। युद्ध के समय भी सारे वानर सेना ने श्री रामचंद्र की सेवा में बड़े क्रोध से युद्ध किया। जब युद्ध करना होता है तो कोई हसमुख चेहरे से युद्ध नहीं कर सकता है, आप कह के कोई युद्ध नहीं कर सकता, उसे बहुत गुस्सा होना है। गुस्सा हुए बगैर कैसे युद्ध करेगा आदमी? तो हनुमान जी और अन्य वानर लोगों ने गुस्से में भगवान की सेवा की। उसी तरह से अर्जुन ने भी युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार। अर्जुन भी बड़े क्रोधित अवस्था में युद्ध कर रहे थे। तरह से अगर गुस्सा करना ही है तो ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा करना चाहिए जो भगवान के आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं, जो भगवान के भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हम गुस्सा हो सकते हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। हमारे जिह्वा जो स्वादिष्ट खाती है उसको, उसका वश हम कर सकते हैं केवल कृष्ण प्रसाद खाके। इसका मतलब है कि हमें होटल वोटल में नहीं जाना है, इधर उधर से खाना नहीं खाना है, हमको केवल भगवान को भोग चढ़ाए हुआ, नैवेद्य में रखा हुआ प्रसाद ही हमको ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे जिह्वा वश में आ सकता है। उदर को कैसे वश में कर सकते हैं? केवल जितना शरीर और आत्मा को एक बनाने के लिए है, हमारे प्राण को शरीर के भीतर रखने के लिए आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए है, उतना ही हमें खाना चाहिए। अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि ठीक है कितना चाहिए प्राण को बनाए रखने के लिए, खाने चाहिए 20 खाने चाहिए, कितना काफी है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो इसके लिए एक जवाब नहीं दिया जा सकता। हमारे शरीर के लिए जरूरी है उतना हमें लेना चाहिए। अगर हमने भीम को बोला कि आपको केवल 2 चपाती खाना चाहिए, तो भीमसेन के लिए क्या ये हो सकता था? नहीं। भीमसेन का और एक नाम था वृकोदर, जिनके उदर में वृक नाम की अग्नि जलती थी, जठर अग्नि, जो पचन शक्ति है हमारे पेट के अंदर। तो भीमसेन की पचन शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसमें भोजन इतने बड़े मात्रा में डालने के बाद ही वो संतुष्ट होते थे। तो भीमसेन जितना खाते थे, अगर हम साधारण व्यक्ति के लिए वही करें तो वो ठीक नहीं होगा। तो जैसे हमारा शरीर है वैसे हमें खाना होगा, लेकिन पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए पेट में। वैसे लोग क्या करते हैं, पेट भरने की बात दूर है, यहां तक खा लेते हैं। पेट तो भर जाता है लेकिन ऊपर भर भर के यहां तक आ जाता है, उतना नहीं खाना चाहिए। केवल जितना आदमी को शक्ति चाहिए काम करने के लिए, अपने अन्य सेवाएं करने के लिए, उतना ही खाना चाहिए बस। उपस्थवेगम, काम वासना का प्रयोग केवल गृहस्थ आश्रम में ऐसे संतानों की उत्पत्ति के लिए करना चाहिए जो कि भगवान के भक्त बन सके, अन्यथा नहीं। इस तरह से ये 6 वेगों को वश में किया जा सकता है, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है, जैसे कि शिव जी हैं धीर पुरुष, धीरों में से सर्वश्रेष्ठ शिव जी, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के बड़े शुद्ध भक्त थे वो, और उन्होंने कितने सारे आकर्षणों के बीच में रहते हुए भी उनका मन बिल्कुल डावाडोल नहीं हुआ, बल्कि भगवान कृष्ण की भक्ति में वो बिल्कुल स्थिर रहे। तो यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इन सारे वेगों को हमको सहन करना चाहिए हमारे भलाई के लिए। अगर आदमी कहे क्या मुसीबत है, हमको ये सहन करने बोलते, वो सहन करने बोलते, कितनी कठिनाई, हम नहीं करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं। समझ लीजिए कि एक मरीज है, उसको कोई बहुत बुरी बीमारी हुई है और आता है और डॉक्टर कहता है अच्छा आपको ये बीमारी है तो आपको मीठी चीजें खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है, आपको डायबिटीज हुआ है तो मीठी चीजें मत खाओ। तो ये व्यक्ति को मीठी चीजें बहुत अच्छा लगता है। अब वो सोचता है कि मीठी चीजें नहीं खाऊं ये कितनी मुसीबत है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मीठी चीजें खाऊंगा तो आगे जाके और मुसीबत होगी। अभी जो मीठी चीजें नहीं खाने से मुझे कष्ट हो रहा है वो तो छोटा कष्ट है, लेकिन अगर मीठी चीजें खाऊंगा तो आगे चल के जो कष्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अपने बुद्धि का वो इस्तेमाल करके मीठी चीजों को त्याग देता है। हालांकि उसको अच्छा नहीं लगता उस समय, लेकिन समझता है कि आगे चल के मेरा ही फायदा, इसलिए वो मीठी चीजों को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है डॉक्टर के आदेशानुसार। तो ठीक उसी तरह से हम लोग भी अभी आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हैं, और जो महान आचार्य होते हैं जिन्होंने हमें शास्त्रों में ये सारे आदेश वगैरह दिए हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि कैसे हमारी बीमारी से हमको ठीक होना चाहिए। हमारी मूल बीमारी क्या है, हम भगवान को भूल चुके हैं, और भूल कर हम यहां पर संसार में अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, और संसार का भोग करना ये हमारा जीवन का उद्देश्य है और इसी में हमारा सुख है ये समझ बैठे हैं। ये हमारी गलती है, ये हमारी बीमारी है कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के बजाय हम ये संसार का भोग करना चाहते हैं, हम ही प्रभु बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं दास बनने के बजाय। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो दुनिया में लोग सोचते हैं कि टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी, ये सब भयंकर बीमारियां हैं, लेकिन ये सब तो छोटी छोटी बीमारियां हैं। इन बीमारियों से ज्यादा क्या हो सकता है, समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा बहुत गहरा कैंसर किसी को हो, एड्स हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है उस व्यक्ति को, शरीर नष्ट हो सकता है। लेकिन एक बार शरीर नष्ट होगा उसको कॉलेरा से या टीबी से या जो भी है, लेकिन ये भोग वृत्ति जो है ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसकी वजह से केवल हमको बार बार शरीर धारण करना पड़ता है, बार बार बीमार होना पड़ता है, बार बार मर जाना पड़ता है। कितने शरीर हमको त्यागने पड़ते हैं इस एक बीमारी की वजह से। क्या आप कोई ऐसे बीमारी को जानते हैं जिससे कि हमें कई शरीर त्याग करना पड़े? यहां एड्स, कैंसर, टीबी से हमें एक शरीर त्याग करना पड़ेगा, लेकिन भोग वृत्ति, भगवत विस्मृति, ये ऐसी बीमारी है जिससे हमको बारंबार बारंबार शरीर त्यागना पड़ेगा। हमने आज तक इस संसार में शायद लाखों करोड़ों जन्म लिए होंगे, और जब तक कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं आएंगे तब तक, अनंत काल तक हम भौतिक शरीर धारण करते रहेंगे। और भौतिक शरीर धारण करना मतलब दुख भुगतना, क्यों? जब तक ये शरीर है ये शरीर ही हमको दुख देगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी बीमारी है हमारी, जिसकी वजह से हम यहां भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में अटके हुए हैं। तो ये हमारी बीमारी की अवस्था है। तो ऐसे अवस्था में हम जब शुद्ध भक्तों के आदेश को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पालन करते हैं, तो धीरे धीरे ये बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको, हम सबको शास्त्रों के आधार पर हमें कई नियम और विधि विधान बताए हैं। जैसे हम चार नियमों का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, खेलना नहीं खाना, और जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये चार चीजें आजकल दुनिया में लोगों को पसंद नहीं है। लोग बोलते हैं अरे ये चार चीजें नहीं करेंगे तो जीने में मजा क्या है, क्या फायदा है जी का, फिर कोई मतलब ही नहीं जीने का। तो लोगों को लगता है कि इन चीजों में ही आनंद है, लेकिन ये हमारे लिए नरक के द्वार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चार नियमों का पालन हमें करना चाहिए, अभक्तों का संग त्यागना चाहिए, भक्तों का संग स्वीकार करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी स्नान करना चाहिए। कितने सारे विधि विधान नियम है। यहां संसार में लोगों का स्वभाव रहता है कि किसी को कोई नियम पसंद नहीं है। पसंद है? अगर सब लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं रास्ते के ऊपर, अगर लाल बत्ती दिखाई जाए तो लोग क्यों रुकते हैं, बताइए? नियम है इसलिए रुकते हैं? नहीं, हाँ? पकड़े जाएंगे इसलिए रुकते हैं, पकड़े जाने पर दंड मिलेगा इसलिए रुकते हैं। नियम है इसके बारे में कोई परवाह नहीं करता। जब रात को आप अकेले जा रहे होंगे, खाली खाली रास्ता है, अकेले गाड़ी आपकी है, तब लाल बत्ती जल रही होगी, आपको रुकेंगे नहीं, तब ठीक है नियम है फिर भी आप जाएंगे, लेकिन दिन में आप नहीं जाएंगे। क्यों? मालूम है पुलिस का आदमी कहीं खड़ा हुआ है, वो पकड़ेगा कि हम लाल बत्ती में नहीं रुके थे। तो आदमी नियमों का पालन करना नहीं चाहता स्वाभाविक रूप से, इसलिए तो इस भौतिक जगत में है वो। यहां लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन देखिए भगवान की माया शक्ति कितनी अद्भुत है कि जितना व्यक्ति स्वतंत्र होने की चेष्टा करता है उतना ही बद्ध हो जाता है, विपरीत परिणाम हो जाता है। और जितना व्यक्ति अपने आप को भगवान के कायदे कानून के अधीन रखता, अपने आप को बद्ध करता है भगवान के नियमों से, उतना ज्यादा वो स्वतंत्र हो जाता है। ये दो बातें बहुत जरूरी है, फिर से दोहराएंगे। जो व्यक्ति कायदे कानून का उल्लंघन करके स्वतंत्र होने की चेष्टा करता है, जितना ज्यादा वो स्वतंत्र होने का प्रयास करता है उतना ही ज्यादा वो बद्ध अवस्था में हो जाता है। जितना ज्यादा व्यक्ति भगवान के कायदे कानून के अधीन अपने आप को कर देता है और अपने स्वतंत्रता को वो काबू में रखता है उतना ज्यादा वो स्वतंत्र हो जाता है। ये विचित्र बात है भगवत भक्ति की, और समझने के लिए इतना कठिन भी नहीं है। इसके लिए एक सरल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे समझिए कि एक देश का नागरिक है और वो सोचता है कि मुझे देश के कायदे कानून, मैं मन में जो आए वो करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं इसलिए मैं जो मन में आए वो करूंगा। हम लोग भी नागरिक हैं, क्या हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं या नहीं है? नहीं है, है ना? आप मंदिर आ सके ना, आपको पुलिस ने रोका नहीं ना कि मंदिर क्यों जा रहे हैं? स्वतंत्र हैं ना आप? हैं, परंतु आपके स्वतंत्रता की सीमा है। वो सीमा सरकार ने कायदे कानून के रूप में बनाई है कि आप स्वतंत्र हैं, परंतु इस सीमा के भीतर। अगर आप बोले मैं स्वतंत्र हूं, मेरा हाथ घुमाना चाहता हूं, घुमाते रहिए, लेकिन सरकार क्या बोलेगी? दूसरे के नाक तक ही बस घुमाइए, उसके आगे मत घुमाइए। उसके आगे घुमाएंगे तो क्या होगा? फिर झगड़ा हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, आपको दंड मिलेगा। तो अगर वो आदमी बोलेगा नहीं मैं स्वतंत्र हूं, मैं हाथ घुमा सकता हूं, बोलेगा नहीं, तुम्हारे हाथ घूमने की स्वतंत्रता उसके नाक पहुंचने तक बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता है लेकिन सीमित है। लेकिन इस सीमित स्वतंत्रता को कोई स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा कि नहीं मैं जो मन में आए करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं, तो फिर क्या होगा? वो कायदे कानून को तोड़ेगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी और क्या करेगी? जेल में डाल देगी। जब जेल में जाएगा तो थोड़ी बहुत जो भी स्वतंत्रता उसके पास थी वो भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो अच्छे नागरिक हैं देश में, जो कायदे कानून का पालन करते हैं और जो अपने ऊपर स्वतंत्रता के ऊपर जो सीमा है, जो बंधन है, उसको खुशी से स्वीकार करते हैं, तो स्वतंत्र रहते हैं। वो जहां चाहे जा सकते हैं, जहां जब चाहे आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव अब यहां पे पड़ा हुआ है, ये उसकी बीमारी है। स्वतंत्रता का कैसे सदुपयोग करना चाहिए यहां बद्ध जीव को नहीं मालूम। तो इसलिए इस बद्ध जीव को नियम चाहिए कि देखो तुम्हारे स्वतंत्रता के ऊपर ये अभी बंधन है, सीमा है। अगर तुम इन नियमों को, विधि विधानों का पालन करोगे तो इस बीमारी से तुम मुक्त हो सकोगे। अगर तुमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो बारंबार यहां जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से श्री कृष्ण यहां फायदा बता रहे कि जो व्यक्ति इस तरह से अपने स्वतंत्रता के ऊपर बंधन स्वीकार करता है खुशी से, स्वेच्छा से, वही व्यक्ति केवल सुखी हो सकता है। तो सहन करना ये हमारी संस्कृति है। आप पूछेंगे अरे सहन करना संस्कृति है? जी हाँ, वैदिक संस्कृति में पहले बताया जाता था कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता था तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में उसको गुरु सिखाते थे कैसे इंद्रियों को वश में करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कैसे उठना बैठना, कैसे सेवा करना, सब कुछ उसे संयम अनुसार सिखाया जाता था। और फिर आगे चल के जब वो 25 साल का हो जाता था तो अगर उसकी इच्छा होती तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था, अगर नहीं चाहता तो सीधे आगे चल के संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि जीवन की शुरुआत से ही वैदिक सभ्यता में सहनशीलता सिखाई जाती थी। ऐसा सहन करके जो दुनिया के आकर्षण हैं उनको सहन करके धीरे धीरे से जब हम हमारी उम्र बड़ी हो जाती है तो फिर आखिर में हम भगवान के पूरी तरह से शरण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य यह है कि कैसे लोगों को तैयार करना भगवान के शरण में जाने के लिए। इसलिए सहनशीलता के लिए उनको पहले से ही ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, आपस में बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया तो आपस में झगड़े रहते हैं, खून खराबा, मार पीट सब जगह। कोई भी सहन नहीं करता आजकल कोई भी चीज। मन इतना कमजोर हो गया आजकल लोगों का, क्योंकि लोग तपस्या नहीं करते हैं, केवल भोग करते हैं। और जो आदमी भोगी है वो सहनशीलता नहीं जान सकता, वो सहनशील नहीं हो सकता। और इसलिए आदमी आजकल इतना अशांत है। तो हमें हमारे इंद्रियों के वेगों को सहन करने के लिए सीखना चाहिए। हाँ, सुख हमारा अधिकार है, आनंद हमारा अधिकार है, परंतु इंद्रियों का आनंद ये सच्चा आनंद नहीं है, ये तो केवल दुख है। लेकिन जब हम झूठे सुख को सच्चा सुख समझ बैठते हैं तो फिर इसके बारे में कोई कौन क्या कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या है ये। बीमार अवस्था में जो सुख है उसको सुख कहते हैं? नहीं। अगर आदमी को पेट का दर्द हो गया है, बहुत पेट उसका दर्द कर रहा है, तो ऐसे अवस्था में वो क्या सुख का आनंद लेगा, क्या इंद्रिय भोग करेगा वो? उसी तरह से हम इस समय आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से बीमार हैं। इसमें जो वो सुख नहीं है। सच्चा सुख तो तब आएगा जब हम पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब है जब हमने इंद्रियों को वश में कर लिया तब हम जानेंगे कि अच्छा सुख क्या है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं सयुक्त सुखी नरः। जो इस तरह से इंद्रियों को वश में करता है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, हे अर्जुन। इसलिए काम क्रोधो भवं वेगम। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग हैं उनको सहन करना चाहिए। शक्नोति इहैव यः सोधुम। सोधुम मतलब सहन करना। ये सहन करना सीख लो। योगियों को जो अष्टांग योग का पालन करते हैं तपस्या करनी पड़ती है अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए इंद्रियों को वश में करना बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि इसमें ऊंचा स्वाद है। गीता में भगवान बताते हैं विषय अविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का ऊंचा स्वाद चखने के बाद व्यक्ति निम्न श्रेणी के इंद्रियों के सुख का स्वाद सहन कर सकता है। वो सामर्थ्य इंद्रियों के वेग को सहन करने के लिए वो कृष्ण भक्ति करके आसानी से आ सकता है। जो व्यक्ति योगाभ्यास वगैरह करना चाहता है उसको बहुत कठिन है इंद्रियों को वश में करना, लेकिन भक्तों के लिए बहुत आसान। कृष्ण भक्ति में एक ऊंचा रस मिलता है, एक सच्चा आनंद मिलता है, और साथ साथ हमारी बुद्धि जब इस बात के ऊपर स्थिर हो जाती है कि ये संसार का भोग दुख का कारण है, इस संसार में सुख नहीं मिल सकता है, तो इन दो चीजों के साथ साथ इनके मिलन से आदमी आसानी से इन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति तानि सर्वाणि संयम्य सारी इंद्रियों को संयम्य करता है, युक्त आसीत मत्परः, जो मेरे संबंध में है, जो मेरी प्रेममयी सेवा करता है, तो आसानी से अपने बुद्धि को मन को स्थिर रख सकता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो जाती है। इस तरह से भगवान का भक्ति करने से हम बहुत आसानी से इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान के बारे में सुंदर ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान के सुंदर रूप का आके दर्शन करना है, भगवान के प्रसाद का सेवन करना है, कीर्तन करना है, बस आनंद ही आनंद है, केवल आनंद कंदा। योगियों की तरह हमको हिमालय में जाकर गंगा में ठंडे पानी में खड़े रहना, या कीलों के शैया पर लेट जाना, या सिर पे खड़े हो जाना, ऐसी तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भक्तों के संग में आओ, भजन कीर्तन करो, प्रसाद लो, बस। इसलिए हमारे लिए इंद्रियों को वश में करने का कार्य जो है वो बहुत ही आसान और सुलभ बना दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका पूरा पूरा फायदा लेकर हमें हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए, सच्चे आनंद की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज प्रश्न उत्तर नहीं होंगे क्योंकि अभी हमें दूसरे गांव में जाना है, अभी निकलेंगे। तो आप कीर्तन कीजिए, फिर आप प्रसाद ले लीजिए।